الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم. बुजुर्गों और भाइयों, कुरान करीम में नफ्स की तीन सिफतें बयान की गई। एक अम्मारतुम बिस्सूई, बुराई का बहुत ज्यादा हुक्म देने वाला, उकसाने वाला, पंपिंग करने वाला, उभारने वाला, बुराइयां याद दिला दिला कर उभारेगा, उकसाएगा, ये भी बुराई कर, वो बुराई कर, वो बुराई कर, वो बुराई कर, वो बुराई कर। नफ्स की एक सिफत तो ये बयान की गई है, और ये सिफत बयान की गई है सूरह यूसुफ में। सूरह यूसुफ में ये मजमून आया है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो बेगुनाह जेल में ठोंसे गए थे और जेल में 9 साल हो गए थे, जेल में रहते रहते उस जमाने के बादशाह ने एक ख्वाब देखा अजीब और गरीब। सात गायें हैं, दुबली मरियल, और सात गायें हैं बड़ी मोटी ताजी। जो मरियल दुबली थी वो सात मोटी गायों को खा गई। उल्टा तमाशा, मोटी अगर कमजोर को खा जाए तो अकल से लगती बात है, लेकिन नहीं, वो दुबली पतली मरियल थी, वो सात मोटी को खा गई। फिर दूसरा सीन, मंजर बादशाह के सामने ख्वाब में यह आया कि गेहूं की सात बालियां हरी हैं और दूसरी सात बालियां खुश्क हैं। आंख खुल गई, दरबार के लोग इसकी ताबीर कुछ नहीं बता सके। उन्होंने कहा कि ये अलवास अहलाम है बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। लेकिन एक कैदी जो बादशाह का साथी था, शराब पिलाने वाला था, वो कैद में रहकर आया था और उसने अपने एक ख्वाब की ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछी थी और उन्होंने जो ताबीर बताई थी वैसा ही हुआ। तो मजलिस में वो साकी भी था, शराब पिलाने वाला भी था। उसने बादशाह से कहा, जेल खाने में एक शख्स है, वो बहुत बिल्कुल सही ताबीर बताते हैं, अगर मुझे आप जरा मौका दें तो मैं जेल खाने में जाकर उनसे ताबीर पूछ कर आऊं। जा भैया पूछ ला। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से ताबीर पूछ कर आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस ख्वाब का मतलब ये है कि आज से 7 साल मुसलसल खुशहाली के होंगे, खूब बारिश होगी, खूब पैदावार होगी, फिर 7 साल के बाद दूसरे 7 साल कहत साली के आएंगे, उनमें कुछ नहीं पैदा होगा, बारिश नहीं होगी, लिहाजा पहले जो 7 साल हैं उसमें जो अनाज पैदा हो उस अनाज को खुश्क करके बालियों ही में रख लिया जाए, दाने गेहूं की बालियों में से दाने न निकाले जाएं। बालियों में से दाने निकालोगे तो गेहूं सड़ेगा, सुरसुरी पड़ेगी, और बालियों में स्टोर कर लो, सड़ेगा नहीं, सुरसुरी नहीं पड़ेगी। करते रहो बालियां से करके सूखा सूखा कर जमा करते रहो, फिर ये जो 7 साल में तुम जो जमा करोगे वो अगले 7 साल जो आएंगे तहत साली की दुबली पतली गायें वो इनको खा जाएंगी। ये सारा जमा किया हुआ गल्ला उन 7 सालों में काम आएगा। ये बादशाह को अल्लाह की तरफ से रहनुमाई की गई है कि देखो आगे 14 साल इस नौइयत के आ रहे हैं, लिहाजा पहले 7 सालों में तैयारी करो ताकि अगले 7 सालों में परेशानी न हो। साथी ने आकर बतलाया कि आपके ख्वाब का ये मतलब है, मतलब दिल लगता था, सबकी समझ में आ गया। तो बादशाह को बड़ी अकीदत हुई यूसुफ अलैहिस्सलाम से, तो बादशाह ने आदमी भेजा कि यूसुफ को एजाज के साथ बुलाकर यहां लाओ। यूसुफ आदमी गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आने से इनकार कर दिया। अब असल मजमून समझना है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आने से इनकार कर दिए और ये कहा कि जिस मुकदमे की वजह से मुझे जेल में डाला गया है और वो मुकदमा पेंडिंग में डाल दिया गया है, वो मुकदमा पहले चलाओ और ये क्लियर करो कि मैं मुजरिम हूं नहीं हूं, ये पहले क्लियर करो, मुकदमा चला कर। वो मिस्र के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर के घर में पले बड़े थे, उनकी बीवी उन पर डोरे डालती थी। एक मरतबा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम घर से भाग कर निकल रहे थे और पीछे प्राइम मिनिस्टर की बीवी उनको पकड़ने के लिए दौड़ी आ रही थी और बाय चांस दरवाजे पर प्राइम मिनिस्टर आ गए। ये भाग कर जा रहे हैं, पीछे बीवी दौड़ी दौड़ी आ रही है। उस मौके पर उसकी बीवी ने फौरन कहा, अपने शौहर से कहा, आपका गुलाम मेरे ऊपर बुरी नजर रखता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, झूठ, ये मेरे ऊपर डोरे डाल रही है। उस मौके पर एक गहवारे के बच्चे ने गवाही दी थी, बोला था और बात साफ हो गई थी कि झूठी वो औरत है, यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। एक मौका तो वो आया था, फिर एक दूसरा मौका आया था जब खानदान की शाही औरतों ने प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर की बीवी को लानत मलामत की, क्योंकि सब औरतें समझती थी कि वो बोरे डाल रही यीशु अलैहि सलाम पर, तो उन्होंने मलामत की, अरे तुझे कोई मिला ही नहीं दुनिया में गुलाम के अलावा, ये ताना दिया कि गुलाम के अलावा तुझे कोई मिला ही नहीं। तो उसने टीप अट्टी रखी, खानदान के सब औरतों को बुलाया, फल फ्रूट सामने रख के छुरियां रखी। जब सब खाने में फल काटने में खाने में मशगूल हुई, तो उसने चुपके से आदमी भेजकर यूसुफ अलैहि सलाम को उस महफिल में बुला लिया। अब जो उस मजलिस में यूसुफ अलैहि सलाम आई, तो सारी औरतें उनकी तरफ देखकर, उनका हुस्न जमाल देखकर दंग रह गई, और औरतों ने अपने हाथ काट लिए। उनको ये भी ख्याल नहीं रहा कि हम सेब काट रहे हैं या क्या उंगलियां काट रहे हैं, सेब काटते काटते उंगलियां भी काट ली। उस दिन सब औरतों ने कहा था कि हमने जो ताना दिया था गलत था, ये हजार गुलामों से बेहतर है जो फरिश्ता है, और ऐसों पर अगर औरत आशिक नहीं होगी तो क्या होगा। और सब ने यीशु अलैहिस्सलाम से कहा था कि अपनी सेठानी की बात मानो, मतलब यीशु अलैहिस्सलाम तो बहर अल्लाह के खास बंदे थे, पैगंबर थे, ऐसे बंदों की अल्लाह हिफाजत करते हैं। फिर भी यीशु अलैहिस्सलाम ने उसकी सेठानी की बात नहीं मानी, अपने आका अपने मालिका की बात नहीं मानी, बल्कि अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे इनके फंदे से बचा, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो असु इलैहिन्ना, मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा। जब अब भी अजीज मिस्र की बीवी के काबू में यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं आए, तो अब एक झूठा मुकदमा खड़ा किया, और झूठा मुकदमा खड़ा करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में पहुंचा दिया, और मुकदमा पेंडिंग में 9 साल गुजर गए मुकदमा पेंडिंग में। यूसुफ अलैहिस्सलाम मुकदमा चलेगा तो पता चलेगा मुजरिम है या नहीं, मुकदमा चलता ही नहीं, उनको जेल में डाल दिया है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो आदमी बुलाने आया था उससे ये कहा, मैं अभी नहीं हाजिर होता बादशाह की खिदमत में, अभी नहीं हाजिर हूंगा, पहले जो मुकदमा पेंडिंग में है उसको चलाओ, और ये वाजह हो जाए कि मैं मुजरिम हूं या नहीं, फिर आऊंगा। उसने आकर बादशाह से कहा, बादशाह ने वो मुकदमा कोर्ट से अपने दरबार में ले लिया। पुराने जमाने में आजकल तो सिविल कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर उसके बाद में मुल्क का जो सदर होता है उसके पास रहम की दरखास्त की जाती है, ये आजकल सिलसिला है। पहले ये सब सिलसिला नहीं था, पहले तमाम काजियों के पास मुकदमे जाते थे, और कोई मुकदमा अपील करनी है तो चीफ जस्टिस के पास जाता था, और चीफ जस्टिस के बाद में फिर अगर आगे बढ़ाना है तो बादशाह खुद मुकदमे को सुनता था, पहले यही सिलसिला था। तो बादशाह ने कोर्ट में से मुकदमा अपने यहां बुला लिया, मंगवा लिया, बुलाया। अब मुकदमे के जो किरदार हैं, ये तो मुजरिम है जो जेल में है, इस पर तो इल्जाम है, उसे क्या बयान लेना है। एक मुद्दई है अजीज मिश्र की बीवी, और उसके विटनेस हैं खानदान के औरतें, खानदान की यानी सेक्रेटरिएट की, गवर्नमेंट के ओहदेदारों की जितनी औरतें हैं वो सब विटनेस हैं, और ऐसे प्राइम मिनिस्टर की बीवी जो है वो मुद्दई है कि उस गुलाम ने बुरी नजर डाली। बादशाह ने बुलाया सब औरतों को, सबसे पहले गवाहों से विटनेस से पूछा, यूसुफ के बारे में तुम क्या कहती हो, मां खतबू कुल नई रावत तुम नई यूसुफ, तो अपना मामला क्लियर करो। जब तुमने उस मजलिस में जब फल काटते काटते उंगलियां काटी थी, उस वक्त तो तुमने यूसुफ से क्या कहा था, क्लियर करो मामला। तो सब गवाहों ने कहा, मा अलिन्ना अलैहि मिन सु, हमने यूसुफ के यूसुफ में कोई बुराई नहीं जानी, मा अलिन्ना अलैहि मिन सु। अब बादशाह ने मुद्दई से प्राइम मिनिस्टर की बीवी से पूछा, अब बोल तू, तेरे गवाह तो सब खत्म हो गए, जिन गवाहियों की बुनियाद पर तूने मुकदमा किया था तो गवाहियां तो गवाह तो खत्म हो गए सब, तू बोल। قالت امرأت العزیز الان حسحس الحق انا راوتہ. اب دودھ پانی الگ ہو گیا, حق اور باطل الگ ہو گیا, میں نے اس پر ڈورے ڈالے تھے, مقدمہ فائنل ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ تھے اور خامخواہ ان کو اتنے لمبے زمانے سے جیل میں ڈال رکھا ہے. کیا ہے بھائی,
ٹویوٹا کیمری ہے A4962688 فوراً ہٹا لیجیے, بلاک کر رہی ہے. ٹویوٹا کیمری A4962688.
یہ مقدمہ صاف ہو گیا, یسوع علیہ السلام کو جیل میں اطلاع کی گئی. اس موقع پر یسوع علیہ السلام نے دو باتیں کہی, وہ دو باتیں عرض کرنی. کہا یہ جو میں نے مقدمہ چلوایا ہے یہ اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لیے نہیں چلوایا, بلکہ میرا جو باس ہے پرائم منسٹر ہے, جس نے مجھے بیٹے کی طرح سے پالا ہے, میں اس کا ذہن صاف کرنے کے لیے مقدمہ چلوایا ہے کہ میں نے اس کے حرم میں کوئی بری نگاہ نہیں ڈالی. ذلک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب, ذالک یہ مقدمہ چلوانا ہے اس لیے ہے, لیعلم تاکہ وہ جان لے, عزیز مصر جان لے کہ انی لم اخنہ بالغیب, اس کی عدم موجودگی میں میں نے اس کے حرم میں کوئی بری نیت نہیں کی ہے, کوئی ہاتھ نہیں ڈالا ہے. یہ بات صاف ہو جائے میرے, اس نے وہ ولی نعمت ہے, اس نے اولاد کی طرح مجھے پالا پوسا ہے, ساری عزتیں اور راحتیں انہیں مجھے پہنچائی ہیں. ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں آئے کہ شاید کچھ دال میں کالا ہو, اس لیے میں نے مقدمہ چلوایا تاکہ اس کا ذہن صاف ہو جائے. اور عرض کیا کہ میں نے اپنی صفائی کے لیے ایسا نہیں کیا, وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو بے گناہ پاک صاف نہیں سمجھتا ہوں, میں نے اپنی صفائی کے لیے مقدمہ نہیں چلایا. ذالک جائے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, بے شک نفس تو بہت زیادہ برائیوں پر ابھارنے والا اکسانے والا ہے. ہاں جس نفس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے وہ ایکسپٹ ہے, وہ نہیں ابھارے گا برائیوں پر, لیکن اگر اللہ کی مہربانی سے حصہ اسے نہیں ملا ہے تو نفس تو برائیوں پر خوب پمپنگ کرتا ہے, ابھارتا ہے برائیوں پر. غرض یسوع علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی صفائی اور اپنی پاکی کے لیے مقدمہ نہیں چلوایا, اپنے آقا کا ذہن صاف کرنے کے لیے مقدمہ چلوایا ہے تاکہ اس کے ذہن سے صاف ہو جائے کہ میں نے کوئی اس کے حرم میں دست درازی نہیں کی. تو اس جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ لفظ آیا ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس کی دوسری صفت ہے لوامہ. لوامہ کے معنی بے حد لانت, ملامت کرنے والا, سرزنش کرنے والا, ڈانٹنے والا, ڈپٹنے والا, لانت ملامت کرنے والا. کس بات کا؟ اللوامہ تو بسیئات, بسیئات کشیدہ ہے, برائیاں ہو جاتی ہیں, برائیاں ہو جانے کے بعد نفس ملامت کرتا ہے کہ بندے خدا تو نے کیا کر ڈالا ہے. وہ گناہ ہونے سے پہلے اکساتا ہے, گناہوں پر ابھارتا ہے, لمارۃ بالسوء, اور یہ گناہ ہو گئے اور گناہ ہونے کے بعد میں دل روتا ہے اور نفس ملامت کرتا ہے, دل ملامت کرتا ہے کہ ہائے بندے خدا تو نے کیا حرکت کر ڈالی, بہت زیادہ ملامت کرتا ہے. اور اسی ملامت کے نتیجے میں پھر مومن گناہ سے توبہ بھی کرتا ہے. جو مومن گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ اسی ملامت کے نتیجے میں کرتا ہے. بہرحال نفس کی یہ دوسری صفت ہے, اس کا ذکر آیا ہے سورہ قیامہ میں, ابھی امام صاحب نے سورہ قیامہ پڑھی تھی. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. فرمایا قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں میں ملامت کرنے والے نفس کی، بہت زیادہ ملامت کرنے والے نفس کی. یہ قسمیں دلیلیں ہیں، یہ دو باتیں دلیلیں ہیں کہ قیامت ضرور آنی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جزا و سزا پانی. دلیل کیا ہے؟ قیامت کا دن. دلیل کیا ہے؟ برائیوں پر ملامت کرنے والا نفس. اب تیرے ذہن میں کیا اشکال ہے؟ کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے مرنے کے بعد جب اس کی ہڈیاں بکھر جائیں گی تو اللہ اس کو جمع نہیں کر سکتے، دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ یہ سمجھتا ہے؟ تو ایا سب الانسان اللہ نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. کیوں نہیں، ہم تو انسانوں کے یہ پورے بھی ٹھیک کر دیں گے، جیسے تھے ویسے ہی کر دیں گے. کہتے ہیں کہ جب سے انسان پیدا، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، آج تک دو آدمیوں کی انگلیوں کے پورے یکساں نہیں آئے ہیں، اور قیامت تک یکساں نہیں ہوں گے. ہر انسان کے پورے الگ ہیں، اسی لیے فنگر پرنٹ دیتے ہیں. تب کتنا نازک اور باریک کام ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی دو انسانوں کے فنگر پرنٹ ایک نہیں ہوں گے. اتنا باریک کام. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے پیروں کو ٹھیک ٹھیک بنانے پر قادر ہیں. تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ہڈیاں اکٹھا کر کے ہم دوبارہ زندہ نہیں کر دیں گے؟ ہم تو تمہارے پیروں بھی ٹھیک ٹھیک بنانے پر قادر ہیں. یہ مضمون چل رہا ہے کہ قیامت آنی ہے. دلیل ایک تو جیسے کوئی ادارہ ہو، یونیورسٹی ہو، اس یونیورسٹی کے قواعد و ضوابط میں لکھا ہوا ہو کہ سال کے فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک ایگزام ہوں گے، یہ چھپا ہوا ہے، تو یہ تو دلیل ہے کہ ایگزام ہونے ہیں. اگر ایگزام ہونا نہ ہونے ہوتے تو چھاپنے کی کیا ضرورت تھی؟ چلو اس دلیل کو رہنے دو. دوسری دلیل سوچو، ایک بھینس کھوٹے سے کھل جاتی ہے، بدکتی ہے، گاؤں میں بھاگتی ہے، ایک بچہ اس کے پیروں میں آیا، کچل ڈالا، بھینس کے دل پر کوئی اثر ہوا؟ پھر بھاگی آگے، دوسرا بچہ آیا، وہ بھی کچل ڈالا پیر میں، اس کے بھینس کے دل پر کوئی اثر پڑا؟ کوئی نہیں. پھر بھینس پکڑی گئی، پھر لوگ دونوں بچوں کے ورثا لکش لے کر آتے ہیں، دے مار دے مار دے مار، تو گاؤں کے لوگ تھوڑی دیر تو خاموش دیکھتے رہیں گے، پھر جب حد سے زیادہ ماریں گے تو لوگ سمجھائیں گے بھائی کہ کتنا مارو گے، جانور ہی تو ہے. ایک تو مثال یہ رکھو. ایک دوسرا مثال لو، اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہوں اور ایک بچہ دوڑتا ہوا آ گیا اور آپ کی گاڑی کے پہیے میں آ گیا، اگر یہ قصور آپ کا نہیں بچے کا ہے، لیکن اگر بچہ پہیوں میں آ گیا اور مر گیا تو آپ وہاں سے ہل نہیں سکیں گے، اتنے دل متاثر ہوگا، خدایا مجھ سے کیا غلطی ہوگی، اور زندگی بھر یہ کانٹا آپ کے دل سے نہیں نکلے گا کہ ایک بچہ بے گناہ میرے کوئی پہیوں میں آ گیا تھا اور غلطی سے مر گیا. بھینس کے دل میں اور آپ کے دل میں یہ فرق کیوں؟ کمپیر کرو. پھر آپ زندگی پر مست، اگر دور ہی بچہ ہوگا تو گاڑی آپ سلو کر لیں گے، زندگی میں کبھی بھولیں گے نہیں، اور بچے نے دو بچے کچل دیے، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں. اور آپ کے دل پر یہ اثر کیوں پڑ رہا ہے؟ یہ آپ کا دل ملامت کیوں کر رہا ہے؟ آپ کا دل رو کیوں رہا ہے کہ خدایا مجھ سے کیا بھول ہو گئی؟ معلوم ہوا کہ بھینس کا انجام اور آپ کا انجام ایک نہیں. معلوم ہوا کہ بھینس کا انجام اور آپ کا انجام ایک نہیں ہے. بھینس کے دل نے اس کو کوئی ملامت نہیں کی. کیوں نہیں ملامت کی؟ اس کا انجام ہی الگ ہے، اس کا اختیار ہی کامل نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں رکھتی ہے. اور آپ کو اللہ نے ایک اختیار رکھنے والی مخلوق بنائی ہے، आप अपनी गलतियों के जिम्मेदार हैं, इसलिए आपका दिल ही मलामत करता है कि खुदा है मुझसे क्या गलती होगी, और निकलता नहीं दिल से कांटा कभी। ये जो मलामत करने वाला नफ्स है, ये दलील है कि इंसान का अंजाम जानवरों से मुख्तलिफ है। इंसान के लिए इस दुनिया में अंजाम नहीं है, इस दुनिया खत्म होकर कयामत का दिन आकर नई जिंदगी शुरू होकर फिर जजा व सजा है। बहरहाल ये एक मजमून है, उस मजमून के जिम्न में नफ्स लवामा का जिक्र आया है कि इंसान का नफ्स मोमिन का नफ्स है जो बहुत ज्यादा, और मोमिन की भी कोई कैद नहीं। अभी ऐसा बच्चा गाड़ी में आ जाए तो कोई भी इंसान हो, मोमिन हो या न हो, उसका दिल कितना रोएगा कि खुदा है। हालांकि गलती बच्चे की थी, लेकिन आदमी पछताएगा कि ठीक है बच्चा नादान था, मुझे भी तो कुछ एहतियात करनी चाहिए थी, मेरी भी एहतियात से बच्चा कुचल गया। तीसरा नफ्स है नफ्स मुतमईन्ना। नफ्स मुतमईन्ना का जिक्र सूरतुल फज्र के आखिर में आया है, और वही आयतें मैंने पढ़ी है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमईन्ना, ऐ मुतमईन नफ्स इरजिई इला रब्बिके राबियतन मरबिया, चल तेरे परवरदिगार की तरफ, लौट तेरे परवरदिगार की तरफ, इस हाल में कि तू अपने परवरदिगार से खुश होगी और तेरा परवरदिगार तुझसे खुश होगा। जब ये रूह मुतमईन्ना जब बारगाह खुदावंदी में पहुंचेगी तो अल्लाह की तरफ से दो बातें फरमाई जाएंगी, उदखुली फी इबादी, जा मेरे खास बंदों में जाकर शामिल हो जाए अभी, और कयामत के बाद वदखुली जन्नती, और मेरे बाग में जन्नत में दाखिल हो जाए। अभी तो नेक बंदों की रूहों में शामिल हो जाए और कयामत के बाद मेरी जन्नत में दाखिल हो जाना। इस जगह पर नफ्स मुतमईन्ना का तज़किरा आया है। ये जो मुतमईन्ना है, जैसे मैंने कहा था कि अम्मारा के बाद तो बिस्सू कुरान में है, इन्ना नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, और लवामा के बाद मैंने इबारत पोशीदा मानकर बतलाई, अल्लवामा तो बिस्सैयात, और अलमुतमईन्ना के बाद क्या पोशीदा है, उसके बाद पोशीदा है अलमुतमईन्ना तो बिताआत, इबादतों पर मुतमईन हो जाने वाला नफ्स। अब ये नफ्स की ये तीन कैफियतें हैं मेरे भाइयों, इसे समझना है, और हर शख्स को कोशिश करनी है दर्जा ब दर्जा आगे बढ़ने की, और आखिरी स्टेज है मुतमईन्ना, उस तक अपने नफ्स को पहुंचाओ। तुम्हारे नहीं आ रहे पांचों उंगलियां घी में, मजे ही मजे, और अगर वहां तक नहीं पहुंचे तो मामला ठीक नहीं। लिहाजा नफ्स की इन तीन कैफियतों को समझो। देखो नफ्स एक है, नफ्स एक है, उस नफ्स के ये तदरीजी अहवाल हैं। जैसे आदमी एक है, बच्चा था, सियाना हुआ, जवान हुआ, अधेड़ हुआ, बूढ़ा हुआ, तो ये पांच आदमी नहीं हो गए, ये पांच आदमी नहीं हुए, ये एक ही बॉडी से अहवाल हैं। बच्चा बॉडी होती, सियाना बॉडी होती, जवान बॉडी होती है, अधेड़ बॉडी होती है, बुढ़ा बॉडी होती है, और अंदर जो रूह है वो तो हर हाल में यकसा है, रूह में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रूह पहले रूह बच्ची थी, फिर वो सियानी, रूह सियानी हुई, फिर रूह जवान हुई, फिर रूह अधेड़ हो गई, फिर रूह बुढ़ी हो गई, रूह नहीं तो एक हालत में। ये जो अहवाल है ये तो बॉडी के हैं, जिस्म के अहवाल है, मगर जिस्म इंसान नहीं है। ये तो जैसे आप हजरात के इस्तेमाल के लिए कार है, आप कार में बैठकर कार स्टार्ट करते हैं और चलाते हैं, इसी तरह से रूह के लिए ये बॉडी जो है ये रूह की कार है, रूह इस कार में बैठ करके बॉडी को डील करती है। फिर एक वक्त आएगा क्या आप कार का डोर खोलकर उतर कर चले गए, कार वहीं पड़ी है। इसी तरह से एक वक्त आएगा कि डोर खोलकर रूह गई, कहां गई के पास आवे, कहां गई के गुजर गई, एक जगह से दूसरी जगह चली गई, इंतकाल हो गया। और ये सड़क के पास क्या पड़ा है, कहिए तो लाश है। लाश यानी लाश है उन नथिंग, लाश जो है अरबी लफ्ज है, पूरा लफ्ज है लाश है उन नथिंग, ये कुछ नहीं। रात को 12 बजे आदमी का इंतकाल होता है, सुबह फोन आता है, हेलो फला साहब से बात करनी है, कब वो साहब तो गुजर गए रात को 12 बजे, हालांकि चारपाई पर बाली पड़ी है, मगर कहते हैं उधर रात को 12 बजे गुजर गए पास आवे। और ये कौन है, ये तो उनकी लाश है, ये तो नथिंग है। ठीक ये मिसाल है, जैसे आप कार इस्तेमाल करते हैं तो एक वक्त आता है कार में से निकल कर चले जाते हैं, इसी तरह से रूह का असल इंसान रूह है, बॉडी तो उसके यूज के लिए। जब असल रूह है तो जैसे मैंने कहा कि जिस्म के ये अहवाल हैं, बच्चा सियाना जवान अधेड़ बूढ़ा, जिस्म के ये अहवाल हैं, इसी तरह से रूह के ये अहवाल हैं, अम्मारा लवामा मुतमईना, ये रूह के तीन अहवाल हैं। अगर रह रह कर बुराइयों के ख्याल आए, मोमिन है या काफिर है इससे कोई बहस नहीं, रह रह कर बुराइयों का ख्याल आता है तो समझ लो कि नफ्स अम्मारा तुम भी सू के मरहले में, वो कोशिशें कर रहा है, हवा भर रहा है, बुराइयां करवाना चाहता है। तो हर आदमी अपने नफ्स का जायजा ले कि वो किस मरहले में है, ये जो तीन मरहले हैं इनमें से किस मरहले में इसका जायजा ले। अगर वो देखे कि जो बुराइयां उसने नहीं की हैं, उन न की हुई बुराइयों का बार बार ख्याल आता है कि ये बुराई करूं वो बुराई करूं वो बुराई करूं वो बुराई करूं, तो समझ लो कि नफ्स अम्मारा तुम भी सू है, बहुत ज्यादा बुराइयों पर उकसाने वाला उभारने वाला है। फिर आदमी जब इससे आगे बढ़ता है तो बुराइयां छोड़ देता है, नफ्स नफ्स की कैफियत आगे बढ़ी, अब मोमिन होगा, मोमिन होगा और मोमिन होकर के सब बुराइयों से कनारा कश। लेकिन कभी कभी नफ्स की शरारत से या शैतान की शरारत से मोमिन से भी बुराई हो जाती है, हो गई बुराई। अब बुराई हो जाने के बाद नफ्स पशेमान होता है, नफ्स रोता है, दिल रोता है कि खुदाया मुझसे क्या हो गया, अब इसका ये नफ्स दूसरे स्टेज पर पहुंच गया है। लोग हैं मुसलमान गैर मुस्लिम, बुराइयां नौजवान बड़ी उम्र के बुराइयां बुराइयां ऐसी ऐसी बुराइयां करते हैं कि जानवरों के दिमाग में भी नहीं आती, ऐसी ऐसी बुराइयां करते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं, मगन है अपनी बुरी जिंदगी पर मगन है, वो पहले स्टेज पर है। और दूसरे वो हैं मोमिन हैं, कोशिश करते हैं कोई गुनाह न हो, हमेशा गुनाहों से बचते हैं, लेकिन फिर भी इंसान है, बशर है, बशरियत के तकाजे से, नफ्स की शरारत से, शैतान के वरगलाने से मोमिन से भी बुराई हो जाती है। लेकिन बुराई हो जाने के बाद फौरन उसके उसका दिल रो नदामत होनी चाहिए, दिल में पशेमानी होनी चाहिए कि खुदाया मुझसे क्या हो गया। ये पशेमानी जब दिल में पैदा होगा तो तौबा तक ले जाएगी, और जब तक पशेमानी नहीं पैदा होगी तौबा नहीं करेगा आदमी, तौबा वही करेगा जिसके दिल में पशेमानी। तो बुराइयां होने करने से पहले बुराइयों पर उभारने वाला ये पहला स्टेज है, और बुराई हो गई शैतान नफ्स के शैतान के असर से उस पर दिल का रोना, यह है नफ्से लवामा। फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ते बढ़ते एक दर्जा आता है कि आदमी शरीयत पर ऐसा ठहर जाता है जैसा पेंडे का लोटा भर करके किसी जगह रख दो तो जैसा रखोगे ऐसा ही रहेगा। लोटे के नीचे गोल चक्कर होता है, वो पेंडा कहलाता है, और बाद मिट्टी के लोटे ऐसे होते हैं कि नीचे कुछ नहीं, तो जो पेंडे वाला लोटा है आप भर करके किसी जगह पर रख दो तो वैसा का वैसा रहेगा। इधर से हवा आई, उधर से हवा आई, उधर से आई, इधर से आई, अपना जगह पर रखा हुआ है, आती रहो हवाएं, लोटे पर क्या असर पड़ता है। किसी ने थोड़ा सा हल्का सा हाथ लगा दिया, इधर से उधर से उधर से लगा दो हाथ, लोटा रखा है साथ में रखा है, और एक बेपेंडे का लोटा है, इधर से हवा आई तो यूं लग गया, इधर से हाथ लगा तो यूं लग गया, इधर से हाथ लगा तो यूं लग गया, इधर से हाथ लगा तो यूं लग गया, ये बेपेंडे का लोटा है। जब आदमी पेंडे का लोटा बन गया है और इबादतों पर उसने अपने आप को ऐसा ठहरा दिया है कि अब डगमगाएगा नहीं, जब इस मरहले में आदमी पहुंचता है तो फिर अंबिया अगर होते हैं तो उनके लिए मासूम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और अंबिया के अंबिया का उम्मती होता है तो उसके लिए महफूज लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे ही बंदों को वली और औलिया कहलाते हैं। वली माने फ्रेंड, किसका फ्रेंड? वलीउल्लाह, अल्लाह का फ्रेंड, अल्लाह का दोस्त। तो वलीउल्लाह जो बंदे होते हैं उनके कोई सरसिंग नहीं होते हैं, हम सब अल्लाह चाहें हम तो हमसे वलीउल्लाह बन सकते हैं। कब वलीउल्लाह बनेंगे? नफ्स को इस तीसरे मरहले में ले आओ, मुतमइन्ना बना डालो, ताआत पर, इबादतों पर, अल्लाह के अहकाम पर ऐसा जमा दो कि अब डगमगाने का कोई सवाल नहीं है। कुछ भी कहीं से भी थपेड़े लगे, नफ्स चाहे कुछ करे, शैतान चाहे कुछ करे, लोटा रखा हुआ है, अब नफ्स हमारा मुतमइन है अपने अल्लाह के अहकाम पर, मुतमइन्ना पर। बस ये मरहला जब आ जाता है तो नबियों के लिए तो मासूम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अंबिया मासूम होते हैं, लेकिन अगर वो उम्मती होते हैं तो फिर उनके लिए महफूज लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि गुनाह से महफूज। जब पेंडे वाला लोटा ताआत पर रखा हुआ है तो वो तो हिलेगा ही नहीं, कैसे गुनाह होगा उससे। और यही औलिया अल्लाह होते हैं, यही वलीउल्लाह होते हैं, यही अल्लाह के दोस्त होते हैं। सूरतुल फज्र के आखिर में इन बंदों का तज़किरा है, उसे समझो। जब मौत का वक्त आता है तो अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, अल्लाह के फरिश्ते आकर के नफ्स से कहते हैं, रूह से कहते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अय वो रूह, अय वो नफ्स जिस तीसरे स्टेज में दाखिल हो गई है और नफ्स मुतमइन्ना है, कब तक इस बदन में फंसी रहेगी? निकल, चल अब तेरे रब के पास चल, इर्जिउ इला रब्बिक। तो हदीस शरीफ में है कि जब फरिश्ते ये कहते हैं कि अब तेरे परवर, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, अंजाम मालूम हो गया, जब फरिश्तों ने कहा ऐ नफ्स मुतमइन्ना तो सब कुछ मालूम हो गया हमें, चल तेरे परवरदिगार के पास, कब तक इस बॉडी के अंदर तू रहेगी, और इस हाल में चल कि तू अपने परवरदिगार से राजी और खुश है, तो तेरा परवरदिगार तुझे पसंद करता है, तुझसे खुश है, इस हाल में चल। तो हदीस शरीफ में है कि जब फरिश्ते ये कहते हैं तो मोमिन की रूह, हर मोमिन नहीं, वो मोमिन जिसका नफ्स आखिरी स्टेज पर पहुंचा हुआ है, उसकी रूह जिस्म से निकलने के लिए बेताब हो जाती है, लेकिन गिरह बंधी हुई है। कैसे निकले? पिंजरा खुलेगा तो परिंदा उड़कर भागेगा, पिंजरे का दरवाजा बंद है। फिर जब फरिश्ते रूह का जिस्म के साथ जो बंधन है, बंदिश है, वो गिरह खोलते हैं तो रूह फुर। और काफिर की रूह को जब फरिश्ते रूह वसूल करने आते हैं तो मुक्के दिखाते हैं, बोलते कुछ नहीं, तो रूह समझ जाती है कि ये कह रहे हैं तू बाहर निकल, तेरी खबर ले हम। तो रूह जिस्म के कोने कोने में घुस जाती है और कोने में जाकर छुप जाती है, निकलना नहीं चाहती। तो फिर फरिश्ते डूबते हैं बाडी में और खींच करके रूह को निकाल करके लाते हैं, ऐसा जैसे थूहर पर रूई लपेट दो और फिर रूई लपेट कर रूह को छोड़ाओ, नहीं छूटेगी, चिंदी चिंदी होकर रूई निकलेगी, ऐसी जख्मी होकर के रूह निकलती। ये मजमून कुरान करीम में आया है, तीसरे पारे की दूसरी सूरत है। वन्नाज़ियात गर्कन, कसम है उन फरिश्तों की जो खींचने वाले हैं डूबकर। ये फरिश्ते हैं जो काफिर की रूह खींच करके डूब करके जिस्म में डूब कर रूह खींच कर निकाल कर लाते हैं। वन्नाज़ियात गर्कन वन्नाशेतात नश्तन, और कसम है उन फरिश्तों की जो बड़ी सहूलत के साथ गिरा खोल देते हैं। ये मोमिन की ये तीसरी किस्म जो है नफ्स मुतमइन्ना की, उसके नफ्स का जो रूह का बदन के साथ बंदिश है वो उन्होंने खोला, गिरा खुल गई। नाशेतात नश्तन फसाबिकात सबकन, फिर कसम है उन फरिश्तों की जो इस रूह को लेकर दौड़ते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, ये नफ्से मुतमइन्ना को लेकर अल्लाह की बारगाह में ले जाकर पेश करेंगे। और हर फरिश्ता ये चाहता है कि वही सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में रूह को पेश करे ताकि अल्लाह उस फरिश्ते से खुश हो। फसाबिकात सबकन फल मुदब्बिरात अमरन, फिर अल्लाह के यहां से जो आर्डर होता है उसका मैनेजमेंट करते हैं ये फरिश्ते। कब्र में राहते हैं, उसकी रूह इल्लीन में भेज देनी है, जन्नत में का वक्त आएगा उसके लिए इंतजाम हुई फरिश्ते करते हैं। मेरे भाइयों, अच्छे लोगों की रूहें इल्लीन में और बुरों की रूहें सिज्जीन में है। इल्लीन और सिज्जीन दो मकामात के नाम हैं। इस दुनिया में अच्छे बुरे सब रल गड्ढा है, इस दुनिया में अच्छे बुरे सब रल गड्ढा है, बल्कि बुराए बुरे लोग छाए रहते हैं। लेकिन इस दुनिया से जब गुजर कर आगे पहुंचते हैं तो फिर छटाई। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमो आज अलग हो जाओ, सेपरेट। तो नेक बंदे सेपरेट, तो जब नफ्से मुतमइन्ना अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है तो पहला हुक्म यह है कि उदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ। ये नेक बंदे हैं, उनके अंदर शामिल हो। यहां इस दुनिया में हम कभी कभी ऐसे बुरे लोगों के दरमियान में हमें जिंदगी गुजारनी पड़ती है कि हम परेशान हो जाते हैं। बहुत से भाई हमसे मुझसे आकर तन्हाई में पूछते हैं, हम इस गंदे मुल्क में रहे न रहे, यहां ये गंदगी है, वो खराबी है, वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, लोगों की बदमाशियां, ऐसा गंदा माहौल है, ऐसी नंगा उरिया नियत है, ऐसी यहां रहे भाग जाए से चले जाए, जहां जाओगे वहां यही मिलेगा, जहां जाओगे वहां यही मिलेगा, कमोबेश का तो फर्क होगा। लिहाजा मेरे भाइयों, दरिया में रहो और पजामा भीगने से बचाओ। कहीं हम ऐसी जगह चले जाएं कि जहां पजामा न भीगे, पूरी दुनिया में सब जगह पजामा भीगे हुए, सारी दुनिया का माहौल ऐसा ही। बस मोमिन की शान ये है कि दरिया में उतरे पर पजामा न भीगने दे। ऐसा कब होगा? अपने नफ्स को मुतमईन न बना दो। अब चारों तरफ से चाहे कोई ठपेड़े आए, वो अपने आप मगन है, दुनिया क्या, उसको दुनिया से कुछ लेना ही नहीं। तो इस दुनिया में तो बुरों के दरमियान में अच्छों को रहना है, और बुरों के दरमियान में रहने से जो नफ्स में इनकबाज होता है उसे भी बर्दाश्त करना है। सेपरेशन मरने के बाद होगा। अल्लाह नफ्से मुतमइन्ना से कहेंगे उदखुली फी इबादी, मेरे खास बंदों में जा, शामिल हो जाए। बुरे बंदे सिज्जिन में, रूहें सिज्जिन में गई, मगर अभी जन्नत में कोई नहीं जा रहा। जन्नत में जाएंगे, कयामत कायम होगी, हिसाब किताब होगा, फिर हिसाब किताब के बाद में एक ओवर ब्रिज रखा जाएगा, उसका एक किनारा इस दुनिया से टिका हुआ है और दूसरा किनारा जन्नत से टिका हुआ है। ये फ्लाईओवर है, इस दुनिया में हिसाब किताब होकर अब चलो इस पर, जब इस पर चढ़कर अगर आप इस किनारे तक पहुंच गए तो आगे जन्नत, और जहन्नम इस फ्लाईओवर के नीचे है। जब कोई जहन्नमी इस पर चलेगा तो नीचे से आंकड़े निकलेंगे और पकड़ करके नीचे, जहन्नम नीचे है जहां वो फ्लाईओवर पर चढ़ा कि नीचे से आंकड़े निकले और उन्होंने पकड़ पकड़ के खींच कर जहन्नम में ले गए, और जन्नती इसको पार करके उस किनारे में पहुंचेगा। कितनी देर में पार करेगा? 500 साल की मसाफत है, 500 साल की मसाफत है, यहां से वहां तक 500 साल की मसाफत है। लेकिन बाज़े मोमिन बिजली कौनती है, इतनी देर में पार कर जाए, चले उतर गए। बाज़े मोमिन घोड़े दौड़ कर पहुंचता इस तरह पहुंच गए, बाज़े मोमिन ऊंट सवार पहुंचता इस तरह पहुंच गए। अपने अमल के एतवार से, अपने अमल के एतवार से इस पुल को पार करना है तो जन्नत में जाने का तो हुक्म है कयामत के बाद, और अभी उस रूह को रूहों में शामिल कर लिया जाएगा। बहरहाल मेरे भाइयों, जो मैं मजबूत समझा रहा हूं उसका खुलासा समझो, उसका खुलासा एक हमारा नफ्स तीन स्टेज में से किसी एक स्टेज में होगा। अगर खुदा न खास्ता पहले स्टेज में है और मोमिन का नफ्स नहीं, एक तो वो मोमिन है जो मर्दमशुमारी के फार्म में मोमिन लिखे हुए हैं मगर कभी भूले से भी मस्जिद का रुख नहीं करते, वो मोमन मरद मेरी मरद नहीं है, ये जो बंदे मोमिनीन बैठे हैं ये पहले स्टेज में तो है नहीं, इनके नफूस उकसाते हो, पंपिंग करते हो, ये बुराई कर वो बुराई कर वो बुराई कर, इंशाल्लाह ऐसा तो नहीं है। अलबत्ता दूसरे मरहले में हमारे नफूस हो सकते हैं कि कोताहियों से, नफ्स के तकाजों से, शैतान के वरगलाने से बहुत सी मरतबा न चाहने के बावजूद हमसे बुराइयां हो जाती हैं, फिर देखो कि बुराई होने के बाद नफ्स मलामत करता है या नहीं। अगर है तो गनीमत समझो इस हालत को, और जब नफ्स मलामत करे तो तौबा करो। अल्लाह की बारगाह मायूसी की बारगाह नहीं, हजार मरतबा तौबा टूटे तो भी वापस जाओ, तौबा करो, उनके दरवाजे के अलावा हमारे लिए दरवाजा है कहां, जाओगे कहां। इसलिए अल्लाह की बारगाह से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, हजार बार तौबा टूटे तब भी उन्हीं के दरवाजे पर जाकर के पो। भूला बिसरा बेटा शाम को भटका हुआ घर आ जाए तो मां बाप कितने खुश होते हैं उस बच्चे से, अल्लाह को उतनी खुशी होती है जब बंदा लौट कर अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है। बहरहाल हमारे नफूस इस मरहले में अगर है तो गनीमत है, लेकिन यहां ठहरो मत, नफ्स को आगे बढ़ाओ, तरक्की दो, और नफ्स को मुतमईन बनाओ, यानी अल मुतमईनत बिताआत, अल्लाह की फरमान बरदारी पर पुरसुकून मुतमईन कंफर्टेबल, अल्लाह की ताआत पर मजा आना चाहिए, अल्लाह की इबादत में खुशी होनी चाहिए, अल्लाह के फरमान और अल्लाह के अहकाम की इताअत करके। मेरे भाइयों, अगर इस मरहले तक हमने कोशिश करके अपने नफूस को पहुंचा दिया तो फिर वारे नहीं आ रहे, मौत के वक्त खुशखबरियां मिलेंगी, अल्लाह के पास पहुंचोगे तो अल्लाह की तरफ से ये एजाज होगा। अल्लाह ताला इस मजमून को समझने की और अपने आप को संवारने की और अपने आप को तरक्की देकर इस आखिरी मरहले तक पहुंचाने की, ले जाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।